सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ऊर्ध्वमूलमदःशाखामश्वत्थं प्राहुराव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदश वेदवित् अधश्चोर्धं प्रशिता तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। प्रिय बंधुओं, माताओं तथा बहनों, कल के प्रसंग में भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उपदेश देते हुए परमात्मा संसार रूपी इस वृक्ष का वर्णन करते हैं। वास्तव में यह जो 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योग होने पर भी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया। परमात्मा कहते हैं, अर्जुन, जिस जगत के प्रति तुम्हें इतनी ममता है, मोह है, आसक्ति है, उस जगत को पहले समझो, उस जगत की जानकारी प्राप्त करो। मैं उसका वर्णन करता हूं। इस जगत का वर्णन ही क्षर जो क्षरणशील है, जो छीण वाला है और जो घटने वाला है, ऐसा जो क्षर पुरुष है, इसी में इस जगत का वर्णन करते हुए परमात्मा वृक्ष की विशेषता और वह वृक्ष की विशेषता कल के प्रसंग में कहा गया। इस वृक्ष का नाम अश्वत्थ क्यों रखा गया? क्योंकि अश्वत्थ के वृक्ष की अनेक विशेषताएं हैं। वास्तव में उसका जो बीज है, पक्षी खाकर और फिर उसके द्वारा यह उगता है, तो जीव के द्वारा उगने वाला, इसलिए वृक्षते इति वृक्षा। वृक्षते का अर्थ है जो काटने से सूख जाए, वृक्षते इति वृक्षा। बहुत से झाड़ ऐसे हैं, इसके अंदर चार वर्ग हैं। चार वर्ग में एक औषधि है, एक वनस्पति है, तीस तीसरी वानस्पत्य है और चौथा यह वृक्ष है। औषधि उसे कहा जाता है, फल पाकात औषधि, जिसका फल पकने के बाद वह सूख जाए वह औषधि है। जैसे धान चावल या गेहूं मटर चना, ये जितने तुम आहार है ना तुम्हारे, इनका नियम है कि फल जब पक जाएगा तो ये सूख जाएंगे, भले कितना भी पानी दो, अमृत की वर्षा हो, लेकिन इन्हें सूखना है। इसलिए फल पाकात औषधि, गेहूं पक गया सूख गया, धान पक गया सूख गया, चना पक गया झाड़ सूख गया, फिर कितने प्रयत्न करोगे वो हरा होगा, इसलिए फल पाकात औषधि। नंबर दो वनस्पति, वनस्पति और वानस्पति जो छोटे छोटे झाड़ वृक्ष हैं और हमेशा हरा ही रहने वाला है, उसे वनस्पति कहा गया। वानस्पति ऐसा है कि वो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, उसकी साइज मीडियम है और वो गुच्छा जैसा होगा। कैसा होगा? गुच्छा। बहुत से झाड़ उसका फल नहीं बनते हैं, लेकिन कई मिलकर एक गुच्छा बनता है, उसको वानस्पत्य कहा जाता है। करण वगैरह के फूल नहीं होते, उसके झाड़ ऐसे ही होते गुच्छा का। और चौथा वर्ग जो है उसका नाम है वृक्ष, और वह बड़े बड़े जो वृक्ष फल के समेत है, जैसे वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उदुम्बर का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, ये बड़े बड़े वृक्ष, बेड़ा है, आंवला है, अब इस देश में कौन कौन से होते पता नहीं है, पर ये सब वृक्ष है। लेकिन वृक्षते एक कहा गया, यह वृक्ष ऐसा है कि अगर मूल कट गई तो ये सूख जाएगा, मूल कटेगी तो काटने से वृक्षते इति। यहां शास्त्र क्या कहना चाहता है, परमात्मा कहते हैं कि जिस वृक्ष का मैं वर्णन करता हूं वह कौन सा वृक्ष, यही कौन सा, यह ऊर्ध्वमूल है, क्या है ऊपर को, ये मूल है, और मूल को काट दोगे तो सूख गया मर गया, यही होगा ना, और शाखा काटोगे तो जिएगा, क्योंकि मूल बचा हुआ है। ऊर्ध्वमूल अगर शाखा, नीचे सब शाखाएं, इसके षडांग कितने अंग है, छह अंग, और प्रत्यंग इसके बहुत ज्यादा है, लगभग 48 से षडांग छोटे अंग, ये सब छोटे छोटे हो गए ना। लेकिन हम लोग कहते हैं साष्टांग दंडवत करो भगवान को, साष्टांग का मतलब क्या है, छओ अंग जो तुम्हारे छह अंग है, षष्ट, षष्ट शब्द संस्कृत का है, षडांग, षडांग, षड अंग से तुम परमात्मा को नमस्कार करो, कितने अंग से, साष्टांग का मतलब षडांग, साष्टांग का मतलब क्या है, मतलब तो जानना चाहिए ना कि साष्टांग का क्या मतलब है, लोग लंबे पढ़कर करते हैं, एक दो तीन हो गए, तीन और दो पांच और एक बीच वाला छह, कितने हुए, छह अंग। तो ये छह अंग को तुम परमात्मा के सामने बिल्कुल क्या करोगे? नमन करो और उसको परमात्मा के सामने हमारा जो ये मूल है, ये मूल के अंदर एक आम है, बुद्धि तुम्हारी आम बुद्धि है, आम करता आम भोक्ता, इसलिए परमात्मा को जब आम बुद्धि से तुम इसे झुका दोगे, सारे शरीर को अर्पण कर दोगे परमात्मा को, और परमात्मा को अर्पण करने से परमात्मा उस अर्पण को, उस नमस्कार को, उस प्रणाम को वह स्वीकार करेगा। क्या करेगा? क्योंकि तुम्हारी जो अहम की बुद्धि है यहां वो नम गई। भगवान अहम को नहीं चाहता, वह कहता अहंकार विमूल आत्मा कर्ता हम की मान्यते तत्वित तुम्हारा अभाव। अहंकार एक ऐसी वस्तु है हमारे अंदर कि वह किसी को अपने सामने, वह अहंकारी आदमी, वह ऐसा होता है। 16वां अध्याय में दैवी गुण और आसुरी गुण बताए, दैवी और आसुरी। किसी ने प्रश्न किया था मुझसे कि महाराज ये ऐसा ये गड़बड़ी क्यों होती है, आदमी और किसी की बुद्धि बिगड़ना, आसुरी काम करना, तो जरूरी है कि द्वंद्व, इस जगत की उत्पत्ति इन दो द्वंद्वों से है। यहां आसुरी प्रवृत्ति भी है और दैवी प्रवृत्ति है, या आसुरी और दैवी इनमें घटबड़ चलता है, कभी वह बढ़ जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति जब बढ़ जाएगी तो जगत में अनेक प्रकार के विप्लव हो जाएंगे और लोग फिर अदाधुद्धि करेंगे, शास्त्र को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, सत्य को नहीं मानेंगे, तो मनमानी करेंगे ना, क्योंकि वह बढ़ गई। इसलिए शासन वहां गड़बड़ा जाता है, यह विवेकहीन बन जाता है, यह अविवेकी बन जाता है, और शास्त्र जो शासन करने वाला है यह निषिद्ध कर्म कहे जाएंगे। कहने का मतलब है, इसलिए परमात्मा इसके बैलेंस को रखना चाहता है, इसके बैलेंस को बनाकर रखता है, क्योंकि परमात्मा का यह जगत, परमात्मा की यह लीला, लीलामय जगत, उसकी लीला को वह समाप्त करना, खराब करना नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें, इस बुद्धि के अंदर वह परमात्मा को ही विराजमान कर। भगवान शब्द है, कौन सा भगवान शब्द? श्री भगवान लिखा है। क्या लिखा है? श्री का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। महात्मा लोग लिखते हैं ना श्री श्री 100। प्रश्न होगा कि श्री श्री 108 क्यों महाराज?
शांति 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 श्यामा शांति शांति शरीराय प्रभावहि
मंगलम भगवान। भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की जय। पवन सुत हनुमान।